नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण की सभी तैयारियां पूरी, मतदान कल। हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना यौन उत्पीड़न के आरोप में बेंगलुरु में गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले से 16 माओवादी हिरासत में। मणिपुर में बाढ़ का कहर जारी और मुक्केबाजी में भारत की अंकुशिता बोरो क्वार्टर फाइनल में पहुंची। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। मतगणना 4 जून को होगी। इस चरण में उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13-13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, उड़ीसा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर मतदान होगा। उड़ीसा में 42 सीटों पर विधानसभा चुनाव और हिमाचल प्रदेश में 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी इसी चरण में होगा। लोकसभा चुनावों के अंतिम चरण में कल उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, वाराणसी, देवरिया, बलिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, गाजीपुर, चंदौली, रॉबर्ट्सगंज और मिर्जापुर लोकसभा सीट शामिल है। इन सीटों पर कुल 144 प्रत्याशी मैदान में हैं। वाराणसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने अजय राय और बहुजन समाज पार्टी ने अतहर जमाल को चुनाव मैदान में उतारा है। गोरखपुर सीट से भाजपा की ओर से रवि किशन और समाजवादी पार्टी की ओर से काजल निषाद मैदान में हैं। झारखंड में अंतिम चरण में कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस चरण में राज्य की गोड्डा, दुमका और राजमहल लोकसभा सीट पर मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा और शाम 5 बजे तक चलेगा। 53,24,000 से अधिक मतदाता 52 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री के रवि कुमार ने बताया कि सभी मतदान कर्मी अपने बूथों के लिए निकल चुके हैं। शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए 50,000 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए मतदान केन्द्रों पर कई विशेष प्रबंध भी किए गए हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
वहीं पंजाब में कल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस चुनाव में 169 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 328 उम्मीदवार मैदान में हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। एक रिपोर्ट।
लंबे समय के बाद इस बार चुनाव में कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं है। ऐसे में सभी 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बहुकोणीय मुकाबले हैं। अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो ये हर चुनाव में घटता बढ़ता रहा है। सबसे अधिक मतदान करीब 71% सन 1967 के लोकसभा चुनाव में दर्ज किया गया था, जबकि पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में 65% मतदान हुआ। चुनाव आयोग ने इस बार 70 पार का लक्ष्य रखा है और इसे पाने के लिए पिछले करीब 2.5 महीने से स्वीप गतिविधियों के तहत मतदाता जागरूकता को लेकर अनेक अभियान चलाए गए हैं। चुनाव से जुड़े अधिकारियों को पूरी उम्मीद है कि कल मतदान प्रतिशत अवश्य बढ़ेगा। शिशु शर्मा शांतल, आकाशवाणी समाचार, जालंधर।
निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान से पहले फैल रही अफवाहों को खारिज किया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि मतदान प्रतिशत बढ़ने से जुड़ी अफवाह देशभर में फैल रही है। श्री राजीव कुमार ने कहा कि कोई भी मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि उम्मीदवारों और एजेंटों को फॉर्म 17C की प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें मतदान प्रतिशत का रिकॉर्ड होता है।
संवैधानिक संस्था होने के कारण अगर कोई आरोप भी लग रहा है तो उसको हमें जवाब देकर और सहन करना चाहिए। जैसे एक बहुत बड़ी अफवाह चलाई गई, वोटर्स का संख्या बढ़ा दी, हर पोलिंग स्टेशन पे हर कैंडिडेट को, हर एजेंट को उसको मालूम है फॉर्म 17C की कॉपी दी गई, लेकिन 10-15 दिन तक ये माहौल चलता रहा। हमारा एक एप्लीकेशन है जिसमें कॉन्टीन्यूअस असेंबली वाइज डाटा पड़ा हुआ है।
कर्नाटक में कल रात बेंगलुरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यौन उत्पीड़न के मामलों का सामना कर रहे हासन के जनता दल एस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया। विशेष जांच दल ने प्रज्वल रेवन्ना को हिरासत में लिया। उन्हें अदालत के समक्ष पेश कर उन्हें विरूद्व यौन उत्पीड़न के अभियोग को लेकर पूछताछ की जाएगी। 26 अप्रैल को रेवन्ना के विदेश जाने के बाद उनसे संबंधित यौन उत्पीड़न का एक वीडियो वायरल होने के बाद विशेष जांच दल का गठन किया गया था। प्रज्वल रेवन्ना ने निर्वाचित प्रतिनिधियों की सत्र अदालत और प्रिंसिपल सिटी में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसकी आज सुनवाई होनी है। छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले के अलग अलग स्थानों से सुरक्षा बलों ने 16 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 11 को बीजापुर थाना क्षेत्र के गोरना परियारापाड़ा इलाके से और 5 माओवादियों को उसूर थाना क्षेत्र के भूसापुर इलाके से गिरफ्तार किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर में कल हुई बस दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है और 69 लोग घायल हैं। यात्रियों से भरी ये बस उत्तर प्रदेश और राजस्थान के तीर्थ यात्रियों को लेकर रियासी जिले के शिवखोरी जा रही थी। इस बस के जम्मू जिले के अखनूर क्षेत्र की एक गहरी खाई में गिर जाने से ये दुर्घटना हुई। घायलों को उप जिला अस्पताल अखनूर पहुंचाया गया है। गंभीर रूप से घायल लोगों को जम्मू के जीएमसी अस्पताल पहुंचा दिया गया है। इस बीच जम्मू के जिला मजिस्ट्रेट ने इस दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना प्रकट की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्तमान वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 7% होने का अनुमान व्यक्त किया है। वार्षिक रिपोर्ट में बैंक ने कहा है कि वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर समान रूप से 7% बढ़ने का अनुमान है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि वित्त वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत गति से बढ़ी। इस दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पिछले वर्ष के 7% से बढ़कर 7.6% हो गई। देश की अर्थव्यवस्था का परिदृश्य सुदृढ़ बना हुआ है। व्यापक आर्थिक बुनियादी आधार और कॉरपोरेट क्षेत्र मजबूत है, साथ ही बाहरी आर्थिक क्षेत्र में भी उभरने की शक्ति मौजूद है। रिपोर्ट के अनुसार विदेशी प्रतिभूतियों से ब्याज आय में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 2023-24 में केंद्रीय बैंक की आय में वार्षिक आधार पर लगभग 17% की बढ़ोतरी हुई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार और मुद्रीकरण की पहल शुरू की है। इसके लिए संयुक्त अरब अमीरात से निवेश आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए दुबई और अबुधाबी में उच्च स्तरीय बैठक और रोड शो कर रहा है। श्री यादव ने भारत में महत्वपूर्ण सरकारी निवेश के कारण एक दशक में देश के 70,000 से 1,40,000 किलोमीटर तक के राजमार्ग विस्तार पर प्रकाश डाला। और अब एक नजर देश के मौसम पर।
मौसम विभाग ने केरल में मॉनसून के आगमन की पुष्टि कर दी है। मॉनसून पहले के अनुमान से एक दिन पहले ही पहुंच गया है। राज्य में पिछले कुछ दिनों से मॉनसून से पहले की भारी बारिश हो रही है। केरल के सभी 14 जिले अलर्ट पर हैं। अलप्पुझा, कोट्टायम और एर्नाकुलम में ऑरेंज अलर्ट है। अन्य सभी जिले येलो अलर्ट पर हैं। इस बीच मणिपुर में बाढ़ का कहर जारी है। इम्फाल शहर बुरी तरह प्रभावित हुआ है। शहर की ओर जाने वाली अधिकांश सड़कें जलमग्न हो गई हैं। बचाव कार्य जारी है। लगभग 800 लोगों को सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचाया गया है। बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए जिले में 3 अस्थायी शिविर पहले ही खोले जा चुके हैं। उधर ओडिशा में पूर्वी राज्य के अधिकांश हिस्सों में पारा बढ़ने के कारण सुंदरगढ़ जिले में भीषण गर्मी से 14 लोगों की मौत हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार राउरकेला सरकारी अस्पताल आरजीएच में कल दोपहर 6 घंटे के भीतर 10 लोगों की मौत हो गई। आरजीएच पहुंचने तक 8 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि बाकी लोगों की वहां इलाज के दौरान मौत हो गई। ओडिशा भीषण गर्मी की स्थिति से गुजर रहा है। समाचार कक्ष से मनोज।
भारत और जापान ने आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की छठी बैठक की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में दोनों देशों ने अपने अपने क्षेत्रों में आतंकवाद के खतरों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया में सीमा पार आतंकवाद के साथ साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों पर भी चर्चा की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने आतंकी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने, संगठित अपराधों जैसे मुद्दों पर चर्चा की। भारत ने दक्षिणी गाजा में फलिस्तीनी शहर रफा में विस्थापितों के शिविर में लोगों के मारे जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। कल नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत लगातार जारी संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का सम्मान करने की अपील करता रहा है। उन्होंने कहा कि इजरायली पक्ष पहले ही इसे एक दुर्घटना मानकर इसकी जिम्मेदारी स्वीकार कर चुका है और घटना की जांच की घोषणा कर चुका है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि किसानों को तकनीकी रूप से आगे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने किसानों को कृषि से संबंधित उद्योगों के साथ जोड़ने पर बल दिया। उपराष्ट्रपति ने उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में ये बात कही। और खेलों में थाईलैंड के बैंकॉक में विश्व ओलंपिक मुक्केबाजी क्वालिफायर में 60 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के अंकुशिता बोरो ने कजाकिस्तान के मुक्केबाज को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। 71 किलोग्राम भार वर्ग में निशान देव ने भी थाईलैंड के यी युंग न्योइन को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इससे पहले अरुंधति चौधरी ने 66 किलोग्राम भार वर्ग में जीत दर्ज करके प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में भारत की वैशाली रमेश बाबू ने महिला वर्ग में अपना दबदबा कायम रखते हुए अपनी बढ़त 2.5 अंकों तक पहुंचा दी है। ओपन सेक्शन शतरंज में अमरीकी ग्रैंड मास्टर हिकारो नाकामुरा भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंदा को हराकर शीर्ष पर पहुंच गए। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद दुनिया की दूसरे नंबर की दक्षिणी कोरियाई जोड़ी को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
धन्यवाद फरहत। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण का प्रचार कल समाप्त होने की खबर सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर प्रकाशित की है। जनसत्ता की सुर्खी है, अंतिम चरण के प्रचार का शोर थमा, मतदान कल। प्रधानमंत्री मोदी, अनुराग, कंगना, रविशंकर और चन्नी मैदान में। राजस्थान पत्रिका लिखता है, आखिरी मुकाम तक पहुंचा चुनाव, प्रचार समाप्त। मोदी बदलते रहे मुद्दे, राहुल हर बार वही वार। भीषण गर्मी ने उत्तर प्रदेश के 164 समेत 227 की ली जान, अमर उजाला की सुर्खी है। वहीं हिन्दुस्तान लिखता है, दिल्ली में 2 दिन लू से राहत देगी बूंदाबांदी। नवभारत टाइम्स ने दिल्ली में आग लगने की घटनाओं की खबर आंकड़ों सहित प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, आग लगने के मामलों ने बनाया रिकॉर्ड, दमकल विभाग को 200 से ज्यादा मिली कॉल, इनमें 183 आग की। प्यास बुझाने को पसीने से तरबतर दिल्ली, दैनिक जागरण ने जल संकट शीर्षक से यह खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, टैंकर की मांग करने के बाद 2 से 4 घंटे तक करना पड़ रहा इंतजार, पानी भरने के लिए लगती है लंबी कतार। वहीं दैनिक ट्रिब्यून ने प्रचंड गर्मी के साथ पानी की किल्लत पर कुछ यूं सुर्खी बनाई है, दिल्ली में आग उगल रहा सूरज, पानी को लेकर मचा हाहाकार। उत्तर प्रदेश के हाथरस से जम्मू कश्मीर जा रही बस के खाई में गिरने की खबर भी सभी अखबारों ने प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, जम्मू में खाई में गिरी बस, 22 श्रद्धालुओं की मौत। अमर उजाला की सुर्खी है, जम्मू पुंछ हाईवे पर दर्दनाक हादसा, क्षमता से ज्यादा सवार थे यात्री।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण की सभी तैयारियां पूरी, मतदान कल। हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना यौन उत्पीड़न के आरोप में बेंगलुरु में गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले से 16 माओवादी हिरासत में। मणिपुर में बाढ़ का कहर जारी। और मुक्केबाजी में भारत की अंकुशिता बोरो क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।